नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज के 30 अप्रैल के संध्या जागृति में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके उत्साह से किए हुए कीर्तन के लिए। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, बहुत सारे पुत्र हैं, सब तो हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं नारद मुनि। ऐसे कहा गया कि नारद मुनि पहले दासी के पुत्र थे और दासी के पुत्र के रूप में उनके पिताजी का देहांत हो गया था और वो जंगल में रहा करते थे, झोपड़ी में। तो उनके घर के पास में एक बार बहुत बड़े बड़े संत लोग आए जंगल में और उन्होंने जंगल में बड़ा यज्ञ किया भगवान की सेवा में। तब नारद मुनि, मतलब पहले जन्म में वो नारद मुनि नहीं थे, तब उस बालक की माता ने, दासी ने, उन महात्माओं की बहुत बड़ी सेवा की, उनके पूरे यज्ञ में उनका सेवा किया। और इस बालक ने इन साधुओं का जो भोजन है, वो भोजन होने के बाद में जो बचा हुआ अन्न है उसको ग्रहण किया। मतलब क्या किया? महाप्रसाद भोजन किया। और साधुओं का भोजन जब हम करते हैं, साधुओं का महाप्रसाद खाते हैं, तो जन्म जन्मांतर के जो बंधन है वो टूट जाते हैं। लोग कहते हैं किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, बात सही है, क्योंकि किसी का झूठा खाने से क्या होता है, उसके जो बुरे कर्म है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। इसलिए हमारे संस्कृति में कैसा है, हम लोग पानी भी कभी झूठा नहीं पीते हैं, पीना है तो ऊपर से पीते हैं और मुँह लगा के पीना है तो भी हम लोग उसको धो के फिर दोबारा मटके में डालते हैं। लेकिन कई घरों में ऐसा होता है कि उसी बोतल से माँ भी पीती है, उसी बोतल से बच्चा भी पीता है, देखते हैं ट्रेन के अंदर वही बोतल को मुँह लगा के सब लोग पीते रहते हैं, वो एक अच्छा कल्चर नहीं है। लेकिन साधुओं का जब झूठा खाते हैं तो वैसा नहीं होता जैसे बाकी लोगों का झूठा खाने से होता है। साधुओं का झूठा खाने से जो उनकी भक्ति है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है और जो हमारे पाप पुण्य है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये बालक ने हर रोज साधुओं का भोजन किया और एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसकी माता का सांप का दंश होकर मृत्यु हुई। साधु लोग चले गए और उसी दिन अगले दिन उनकी माता को सांप काटा और माता का देहांत हो गया। अभी जंगल के अंदर कोई नहीं है, एक ही अकेला 5 साल का बालक है, लेकिन 5 साल के बालक के अंदर भी ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया था साधुओं की सेवा करने से और साधुओं का जूठा खाने से, कि उसने, उसके पास कोई धन भी नहीं था, तो उसने क्या किया, उसी झोपड़ी में माता को रखा जिसमें वो रहा करते थे, और वो झोपड़ी को आग लगा दिया, क्योंकि लकड़ी तो है ही नहीं उसके पास, कोई धन तो नहीं है, उसी झोपड़ी को आग लगा के माता जी का दाह संस्कार किया। अभी कुछ नहीं जिंदगी में, ना घर है, ना माँ है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई धन है, कोई दौलत है, कुछ है ही नहीं। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते जंगल में घूमते 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 विरक्त होकर एकदम पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति है उनको, क्योंकि साधुओं का सेवा किया है। तो इतना दूर 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 चले गए, आखिर में एक जगह पर वो बैठ गए, आंख बंद करके ध्यान लगाया भगवान के ऊपर, और अचानक उनके मन में भगवान का दर्शन हुआ। भगवान जो है पूरे अपने ऐश्वर्य के साथ में उनके हृदय में प्रकट हो गए, उन्होंने आंख खोली तो उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गए, और उनको देखकर ये बालक इतना भावविभोर हो गया, इतना विभोर हो गया, रोने लगा, भगवान को पुकारने लगा, और अचानक भगवान अदृश्य हो गए। और अदृश्य होने के बाद बालक इतना रोया, पहला रोया खुशी से, आनंद से भगवान को देखकर दर्शन करके, और उसके बाद में रोया भगवान को खोने के लिए, खोने की वजह से, कि भगवान आप तो थे अभी कहाँ गए। तो भगवान आवाज के रूप में उनसे बोलते हैं कि मैं आपको अभी कभी भी दर्शन नहीं दूंगा, जो आपने मुझे दर्शन किया है उसके लिए आप तड़पोगे, और उसके तड़पने की वजह से ही आप महात्मा बन जाओगे। जो दर्शन आपने प्राप्त किया है, जो देखा मुझे आपने, उसकी याद में आप जब रोओगे तो उसी अश्रुओं से आप महात्मा बन जाओगे। तो फिर इस जिंदगी में वो रोते रहे उस भगवान के दर्शन की याद में। तो जब अगला जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के मन से उनका जन्म हुआ, मन ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हो गए वो, इसलिए उनको क्या कहा गया है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहा गया उनको, मानस पुत्र यानी ब्रह्मा जी के मन से उनका जन्म हुआ है, और वो है नारद मुनि। हाँ, ये नारद मुनि की कहानी जो है वो भागवत में आती है। तो हम लोग कहेंगे हमारे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, हम ब्राह्मण के पुत्र नहीं है, हम शास्त्र नहीं पढ़ सकते, हमको संस्कृत नहीं आता है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब घर के हैं, हम कैसी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन इस पर कुछ डिपेंड रहता नहीं है कभी भी, कि हम गाँव के हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। उस बालक के पास कुछ नहीं था, ना ज्ञान था, धन दौलत थी, ना कोई सहारा था, एक झोपड़ी में रहते थे, लेकिन उन्होंने साधुओं की सेवा की। ऐसा कोई कह सकता है क्या कि हम साधुओं की सेवा नहीं कर सकते? उन्होंने कुछ नहीं किया, जो भी उनकी ज़रूरत है वो उन्होंने किया, झाड़ू लगाया, फूल ला के दिया, उनको साफ सफाई किया, हाँ, हाथ पे सामान ला के दिया, यहाँ से वहाँ रखा, उधर से इधर रखा, जो बोला वो किया, भोजन बनाया उनके लिए, भोजन बना के खिलाया, बर्तन साफ किए, और बचा हुआ महाप्रसाद ग्रहण किया। इसलिए वैष्णव सेवा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे पास कुछ भी ना होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैष्णव सेवा जब हम करेंगे तो जो आगे की दो जो सीढ़ियां हैं, तीन सीढ़ियां हैं भक्ति की, एक है भक्तों की सेवा, दूसरा है नाम रुचि, मतलब भगवान के नाम के प्रति आकर्षण। अभी आप लोग जप कर रहे हैं, हमारी क्या स्थिति है जब जप करते हैं? हाँ राकेश, हमारी स्थिति क्या है, हमको जप करते हुए नींद आती है, जप करते नींद आती है, सो जाते हैं, या जप करते हुए हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता है, मन में कितने विचार आते हैं, किसको मिलना है, किसको अपॉइंटमेंट दिया है, इधर जाना है, पैसा कमाना है, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, सब्जी कौन सी बनानी है, हाँ कपड़े बांधने हैं, 1 तारीख को छुट्टी है तो क्या क्या करना है, किसको किसको मिलना है, बाजार से क्या लाना है, ये सारे विचार जब कर तक मन में आते हैं। मतलब क्या होता है उसका, बेटी की शादी है, हॉल बुक करना है, केटरर को लाना है, हाँ सोने का भाव कम हो गया है तो भी जाके जेवर बनाना चाहिए, सस्ता हो गया है तो जल्दी जल्दी साड़ी खरीदना है, कितना काम है। जब करते समय ये सारे विचार मन में आते रहते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, विकल्प, विकल्प यानी जब छोड़ के बाकी सारे चीज़ मन में चलते रहते। जब करते समय जब करना चाहिए और भगवान के ऊपर ही मन रखना चाहिए, तो भगवान को छोड़ के बाकी सब पर मन भागते रहता है, यहाँ से वहाँ, जैसा होता है ना वो फुल पकड़ू, क्या बोलते हैं उसको, तितली बोलते हैं उसको, फुल पकड़ू, वो क्या करता है, कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे, कभी नीले फूल पे तो कभी हरे फूल पे, कभी हरे फूल पे तो कभी पिंक फूल पे, कभी गुलाबी फूल पे, ना एक फूल पे बैठता नहीं कभी, वो दो दो मिनट में फूल बदली करते रहते, मन कहीं स्थिर नहीं है, यहाँ से वहाँ भटकते रहता है। तो ये भगवान के नाम के अंदर हमको रुचि नहीं है, इसलिए हमारा मन यहाँ से वहाँ भटकते रहते। कथा में नींद क्यों आती है बताओ, क्योंकि कथा में हमको रुचि नहीं है। अभी कोई सनसनीखेज कहानी बताएंगे आपको, अमिताभ बच्चन का किसका प्रेम था पहले, सब लोग जगे जाएंगे, वाह क्या बोल रहे हैं, शाहरुख खान का नया लव अफेयर कौन सा है, तुरंत आपको जगाएंगे। या आपके विषय में कुछ कहा जाएगा, समझो आपके विषय में, आपके जीवन के बारे में कहा जाएगा, आपकी नींद उड़ जाएगी, क्या बोलने वाले हैं प्रभु जी, बोलो सही गलत तो नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, या जो बोलना नहीं चाहिए वो भी बोलने वाले हैं क्या जो हमारे विषय में है। अभी हमको मार्च के बाद में पगार कितना बढ़ेगा, सबकी नींद खुल जाएगी, कितना मिल रहा है बस, क्योंकि उसमें हमको इंटरेस्ट है, इसलिए कितनी भी नींद आती होगी तो भी नींद उड़ जाती है। तो जिसमें रुचि होती है वहां पर मन लगा रहता है, मन को क्या चाहिए वो मिलता होगा तो मन वहां पर लगा रहेगा। ऐसा नहीं कि मन लगता नहीं किसी में, मन सब में लगता है, जहां पर अपना इंटरेस्ट है वहां मन लगता है। तो स्यान महस सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्, जब साधुओं की हमारे हाथ से सेवा होती है तो अपने आप भगवान के नाम में रुचि पैदा होती है। ये बात समझ में आपको आया, इसलिए भक्ति विधान में हम लोग साधुओं की सेवा करते हैं। कोई महात्मा आते हैं, कोई सन्यासी आते हैं, कोई ब्रह्मचारी आते हैं, उन सबको हम लोग रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको यहाँ वहाँ घुमाते हैं, दवा करते हैं, ये डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, उनकी सेवा करते हैं। एक ही उद्देश्य से, हमारे पास ज्ञान भी ना हो, धन दौलत भी ना हो, कुछ भी ना हो, हमारे पास कोई साधन ना हो, लेकिन वैष्णवों की सेवा करने से अपने आप भगवान के नाम के प्रति रुचि पैदा होती है। और फिर ऐसा नहीं कि भगवान के नाम की रुचि पैदा होगी तो हम वैष्णव सेवा बंद कर देंगे, अभी जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। वैष्णव सेवा ये भगवान को बहुत प्रिय है, दो चीज़ भगवान को बड़ी प्रिय है, एक उनके नाम का जप करना और एक उनके भक्तों की सेवा करना, ये दो चीज़ करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिनको भगवान को प्रसन्न करना है वो वैष्णवों की सेवा कभी छोड़ते नहीं, भगवान के भक्तों की सेवा, महात्माओं की, संतों की सेवा कभी छोड़ते नहीं, वो जारी रहेगी और उसके वजह से भगवान के नाम के प्रति जो आकर्षण है वो बढ़ता रहेगा। और जब भगवान के नाम के प्रति, जब भगवान के नाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा तो फिर बाकी लोगों के प्रति हमारे मन में दया उत्पन्न होगी। वो क्यों, दया क्यों उत्पन्न होनी चाहिए बताओ, दया उत्पन्न इसलिए होनी चाहिए, अरे ये तो लोग दुनिया में कष्ट भोग रहे हैं, ये सब लोग कष्ट भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा कष्ट सह रहे हैं। जब हमको ये ज्ञान होता है संतों की सेवा करने से, संतों की सेवा करने से हृदय में, मन में, बुद्धि में ये जानकारी प्राप्त होती है कि जीवन क्या है, कितना कष्टमय है, हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जानकारी उत्पन्न होती है। और तब हम जब दूसरों को देखते हैं तो वो लगता है, अरे ये लोग अभी तक भगवान के चरणों में क्यों नहीं आए, अभी तक क्यों दुनिया में भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ डोल रहे हैं, इसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, जिसमें सही आनंद नहीं है उसके पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको बोलने की इच्छा होती है, उनके अंदर समझाने की इच्छा होती है, बताने की इच्छा होती है, इनको बताना चाहिए कि लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या होगा इनका आगे। तो उसको कहते हैं नाम रुचि के बाद में जीव दया, जीवों के ऊपर दया आती है। और हम सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर नाम के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए। क्यों जरूरी है रुचि उत्पन्न होना? क्योंकि हम सब लोग इस दुनिया में दुख भोग रहे हैं, किसी के जीवन में सुख नहीं है। कुछ अच्छी घटना भी होती है तो उसके बीच में कितना कष्ट होता है, हाँ, शादी करनी है तो भी गर्मी के मौसम में कितना कष्ट होता है, उस दिन का इतना इंतजार करते रहे, उस दिन इतना थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं, कपड़ा वपड़ा सब गिल्ला होके मेकअप पूरा उड़ जाता है, हाँ, इतनी गर्मी का मौसम, उसमें मुहूर्त निकलते हैं, बाकी मुहूर्त नहीं मिलते हैं, इसलिए सब लोग गर्मी के मौसम में भी लगे रहते हैं। इतना खर्चा करना पड़ता है, मान पान करना पड़ता है, इतना उनको बुरा लगता है, इनको बुरा लगता है, इसको ये नहीं दिया, उसको वो नहीं दिया, हमारा मान सम्मान नहीं किया, हमको देखा भी नहीं, हमको पूछा भी नहीं। एक खुशी के मौके पर भी कितनी दुखी घटनाएं होती हैं। और कुछ कुछ जातियां ऐसी हैं, समाज ऐसा है कि उस शादी में मारा मारी हुए बिना शादी होती नहीं, कोई ना कोई मारा मारी करेगा, गाली वाली देगा, धक्का मुक्की करेगा, फिर शांत करेंगे, फिर शादी होगी। होता है ना ऐसे गाँव में? एक गांव ऐसे इधर है पश्चिम महाराष्ट्र में पालघर के आगे, वहाँ पर शादी में शराब नहीं पिलाया किसी को तो झगड़ा होता है। अरे शादी में बुलाया और शराब नहीं पिलाया, इतना बड़ा अपमान किया हमारा। फिर मारामारी होती, फिर जो शादी इसके घर पे है उसके नाम से गाली बकते हैं। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि खुशी के मौके पर भी इस दुनिया में बड़े दुख होते हैं। दीपावली का दिन है, दीपक जलाए जा रहे हैं, सब लोग अच्छा स्नान कर रहे हैं, पति पत्नी का झगड़ा होता है दीपावली के दिन, खाना नहीं बनता है घर में दीपावली के दिन, बोलो, सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं। किसी का बर्थडे है तो बर्थडे के आदमी के साथ ही झगड़ा होता है, ऐसा है दुनिया में सब। यहाँ पर कोई सुख नहीं है और देवता लोग यहाँ पर आने की बात सुन के भी डरते हैं, यहाँ आना पड़ेगा, ये विशाल से ही डर जाते हैं। कैसे? एक कहानी है सुंदर उसकी, चार कुमार थे ब्रह्मा जी के पुत्र, और एक ब्रह्मा जी के बहुत सारे पुत्र हैं, एक नारद मुनि की कहानी बताई आपको मैंने। तो नारद मुनि का जब जन्म हुआ ब्रह्मा जी के मन से, उसके बाद में चार पुत्र हुए और, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, बड़े तपस्वी बने वो। नारद मुनि ने प्रचार किया, उनको बताया कि इस दुनिया में मत फंसो आप, ये दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, आप भजन करो भगवान का, तो शादी वादी मत करो, ब्रह्मचारी बने रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ब्रह्मचारी बने रहे। तो इतना उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि उनको लगा कि ये शरीर को बड़ा ही नहीं होना देना चाहिए। अपनी योग की शक्ति से उन्होंने शरीर को 4 साल का बनाए रखा, वो जवान होगा ही नहीं, जवान नहीं होगा तो फिर वो काम वासना पैदा ही नहीं होगी उसके अंदर। तो लाखों साल पुराने थे वो शरीर उनका, लेकिन था 4 साल का ही, उसके आगे बढ़ा ही नहीं वो। तो ये महान चार ऋषि जो हैं 4 साल के नंगे शरीर में वैकुंठ गए, तो वैकुंठ में द्वारपाल थे जय और विजय, दरवाजे पे गेट पर खड़े थे, रक्षा कर रहे थे। तो ये जा रहे लगे अंदर, तो उन्हें रोका उनको, अरे तुम कौन हो, नंगे बालकों के लिए यहाँ प्रवेश नहीं है, ये कोई खेलने का गार्डन नहीं है, ये विष्णु जी का घर है, इसमें तुम लोग ऐसे घूम रहे हो जैसे कोई गेंद खेलने जा रहे हो, रोक लिया उनको। एक्चुअली वो बालक नहीं थे, वो तो कई हजारों साल लाखों साल उम्र वाले ऋषि थे वो, लेकिन जय विजय उनको 4 साल के नंगे शरीर में देखकर पहचान नहीं पाए कि ये कौन महात्मा है। जैसे उनको रोका तो 4 बालकों ने, ऋषियों ने जय विजय को शाप दे दिया कि तुमको पृथ्वी पर जाकर जन्म लेना पड़ेगा। तो ये सुनकर जय विजय इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए, केवल जाने की बात हो रही है, अभी तक गए नहीं है, जाना पड़ेगा यही बोल रहे हैं। वे एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आएगी सोचकर यहाँ पर पेट में गड़बड़ हो जाता है, एग्जाम तो वो दूर है अभी, लेकिन एग्जाम आने वाली है, पढ़ाई हुआ नहीं है, सोच के ही हमारे दस्त लगते हैं, वो लूज मोशन में। वैसे पृथ्वी पर जाने का बात सुनकर इनको इतना दुख हुआ, ऐसे कहते हैं कि वो 4 लोगों ने उनको बताया कि 7 बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा, 7 बार। तो उन्होंने पूछा कोई डिस्काउंट मिलेगा क्या इसके अंदर? कोई डिस्काउंट हो? 7 बार बहुत लंबा होता है, 7 बार मतलब जन्म, 7 बार, 7 बार बूढ़ा होना, 7 बार बीमार पड़ना, अनेक बार सात बार मृत्यु होकर फिर हमको मुक्ति मिलेगी, ये बहुत लंबा चक्कर है, कुछ डिस्काउंट दे दो हमको। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तीन बार राक्षस बन के जाना पड़ेगा, सात बार भक्त बन के जाने के बदले में तीन बार राक्षस बन के जाओ। तो फिर वो बने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु पहले जन्म में, अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और अगले जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। पहले जन्म में उनको वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, दूसरे जन्म में हिरण्यकशिपु को किसने मारा? बोलो बोलो, हाँ नरसिंह भगवान ने मारा था, पक्का ना? फिर रावण को किसने मारा? कुंभकर्ण को किसने मारा? ऊंद नहीं मारा, राम नहीं मारा। और दंत वग्रह किसने मारा? तीसरे अवतार में कृष्ण भगवान ने। और शिशुपाल को किसने मारा? कृष्ण भगवान ने ही मारा। लेकिन तीन बार उन्होंने डिस्काउंट मांग के जन्म लिया, ये बात जरा सोचने लायक है। हाँ, वैकुंठ के रहने वाले लोग जो है पृथ्वी पर आकर रहने को डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ है, और हम लोग बड़ी शान से यहाँ जी रहे हैं, हमको तकलीफ नहीं हो रही है। और तकलीफ हो भी रही है तो हम लोग को इतनी बुद्धि नहीं कि हमको समझ में आए कि तकलीफ हो रही है। जैसे कोई शराब पी के गटारी अमावस्या के दिन गटर में सोता है एकदम मस्त में, उसको क्या लगता है कि मैं स्वर्ग में सो रहा हूँ, है ना? जब सुबह उठता है, उसकी उतरती है, तब उसको समझता है वो कहाँ सोया हुआ है। तो उसको गटर में सोते हुए भी ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बढ़िया आनंद ले रहा है? क्योंकि उसको नशा हो गई है, इसलिए समझता नहीं है उसको काम रहे। तो इस दुनिया में अगर आप रह रहे हो और आपको आनंद आ रहा है, मतलब आप नशे में हो, आपको वास्तव में ज्ञान नहीं है, इसी नशा में हुआ, इसलिए जो हो रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, समझे आपने बहुत होली खेला दिन भर, हाँ, तो जब होली खेलते हो आपका शरीर रंगा हुआ है, एक और रंग डाल दिया आपके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डाल दो और एक, और कोई पिचकारी मार दिया तो भी चलता है। लेकिन एक बार आपने 4 बजे स्नान किया होली होने के बाद में और नए स्वच्छ कपड़े पहने, तब आपके सामने एक भी आदमी आएगा छोटी सी पिचकारी लेके तो आप भाग जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? बोला अभी होली हो गया, अभी तो स्नान करके सब कुछ चकाचक हो गए, स्वच्छ कपड़ा पहन के बैठे हुए हैं, अभी होली का एक इतना पिचकारी भी आएगा सामने तो भी आप भाग जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप स्वच्छ हो चुके हो। जब होली के रंग में रंगे हुए हो तो उसमें आपको और एक बोतल डाल दे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता कुछ। उस तरह से जब तक दुनिया के दुखों में डूबे हुए हो चलता है सब कुछ सही है, क्या क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना? अभी क्या है, ट्रेन में तो रोज गर्मी होती ही है, इसमें क्या है? ट्रेन में धक्का मुक्की रोज तो होती रहती है, ऐसा आपको लगता है नॉर्मल है? नॉर्मल नहीं है ये, जो आपको पसंद नहीं है आपको सहना पड़ता है उसको रोज। अगर आपको पूछा जाए कि ट्रेन में आप अकेले एक डब्बा में रहेंगे, सो के यात्रा कर सकते हैं, कितनी खुशी होगी आपको, लेकिन वो तो स्वप्न ही है कि मुंबई के लोकल में आदमी सो के अच्छी तरह से पैर छोड़ के काम पे जा रहे हैं 2 घंटा सो के, ये तो खाली स्वप्न है, लेकिन ये होता नहीं है वास्तव में। किसको लगता है 8 घंटा काम करो, बहुत खड़ूस बॉस है उसके अंडर काम करना पड़ता है, टाइम पे पगार देता नहीं है, गाली देते रहता है, कभी 4 घंटा रोक के रखता है तो उसका पगार देता नहीं है, लेकिन लोग फिर भी काम पे जाते रहते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, नौकरी तो नहीं मिलेगी और कहीं। तो तात्पर्य यह है कि इस भौतिक दुनिया में बहुत दुख है और वो हमको समझ में आता नहीं है कि दुख है करके। जिस व्यक्ति को इस भौतिक जन्म में जीते हुए समझ में आता है कि यहाँ पर दुख है, ऐसा कहते हैं कि उसकी बुद्धि की शुरुआत हो गई है, सही बुद्धि जो है वो आना आरंभ हो गया है। जब सही बुद्धि आती है तो उसको समझ में आता है कि दुनिया में दुख है। जैसे कि आपको बहुत नंबर है समझो, तो दिखाई नहीं पड़ता है, तो आपने सब सही है, सब ऐसा दिखता है ना, पूरा वाइट वॉश जैसा दिखता है, लेकिन जैसे चश्मा लगा लिया तो मालूम पड़ेगा, अरे ये तो मेरी बीवी है, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा फ्रेंड है, ये तो मेरा नेबर है, तुरंत मालूम पड़ेगा आपको। इसका मतलब पहले वो नहीं थे क्या? सब लोग पहले थे लेकिन आपको नजर नहीं आ रहे थे, वो दिखाई नहीं पड़ रहे थे, आपका नंबर था बड़ा आंखों में, या तो मोतीबिंद था दिखाई नहीं पड़ रहा था, जैसे मोतीबिंद निकल गया चश्मा आ गया तुरंत मालूम पड़ा, ये तो राजेंद्र कृष्ण प्रभु है, ये तो विलास सपकड़ है, हाँ ये तो प्रफुल्ल पवार है, तुरंत मालूम पड़ता था। तो वैसे सच्चाई जानने के लिए जो बुद्धि आवश्यक है, वो बुद्धि जब आती है तो मालूम पड़ता है कि दुनिया में बड़ा दुख है, और वो समझने के लिए आपको बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझने के लिए आपको ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत धनवान घर में आने की जरूरत नहीं है। जो संत का सहारा लेता है, जो संतों की सेवा करता है, भगवान के नाम का जप करता है, उसको अनपढ़ होते हुए भी ये जानकारी होती है कि ये दुनिया में बड़ा दुख है। कोई पत्नी, कोई बेटा, कोई पति, कोई घर वाले, इनसे कोई सुख नहीं प्राप्त होता है, ये सब तो रहते हैं ऐसे ही है, नाम के लिए अपने होते हैं और सबसे दुख प्राप्त होता है। जितना पास वाला आदमी हो अपने, उतना अधिक दुख देता है वो। हमको सबसे दुख कौन दे सकता है? हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारी बेटी, हमारा बेटा, सबसे अधिक दुख जो है वो उनके पास से होता है। अगर बाहर का लड़का सिगरेट पिएगा तो तुमको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा लड़का सिगरेट पिएगा तो तुमको कितना कष्ट होगा तुमको। मतलब पोटेंशियल टू गिव अनहैप्पीनेस इज देयर इन क्लोजेस्ट पीपल, तुम्हारे घर के अंदर के जो लोग हैं उनके अंदर आपको सबसे अधिक दुख देने की शक्ति होती है। ये सब क्यों है? क्योंकि हम लोग ऐसे जगह पर जी रहे हैं जहां पर हमको रहना नहीं चाहिए। ये जगह में भगवान ने बुलाया कि केवल दुख है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर जीव को सुख चाहिए तो उसको भौतिक दुनिया पर प्रेम नहीं करना चाहिए, इस दुनियादारी के चीज़ों पर ज़्यादा मन नहीं लगाना चाहिए। ये इसी तरह से है जैसे अगर आपको जेल में डाला गया तो आप प्लानिंग करेंगे जेल में अच्छा खाना कैसे मिलेगा, जेल में अच्छा कमरा कहाँ मिलेगा, जेल में गर्मी में पंखा मिलेगा क्या, कूलर मिलेगा, एसी मिलेगा, ऐसा सोचना मूर्खता की बात है। क्योंकि जहाँ पर हमको डाला गया है तकलीफ के लिए, कष्ट देने के लिए, वहाँ पर परमानेंट रहने का प्लानिंग नहीं करना चाहिए, वहाँ पर सुख सुविधा उत्पन्न करके वहां से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी। चाहे अपनी झोपड़ी में आकर रहेगा लेकिन जेल में रहना नहीं चाहिए। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, जेल में जाके तुरंत अपना वसीला लगाकर वहां पर फाइव स्टार खाना, घर का खाना, गद्दे वाला सोने का बिस्तर और एसी और कमरा और ये वो, अपना चॉइस का कोने वाला कमरा, बाथरूम अटैच होना चाहिए उसके अंदर, ये सब प्लानिंग करता है। हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं इस दुनिया में, और अधिक अच्छा बसने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वैकुंठ वाले लोगों को खाली बताया गया कि तुमको शाप दूंगा मैं, अभी तुमको पृथ्वी पर जाना होगा, वहीं से कांपने लगे वो। देवता लोगों को भी बहुत दुख होता है यहाँ आने के लिए, वो हमको देखकर हंसते रहते हैं कि ये सब पृथ्वी के लोग जो है इनके शरीर से कितनी बदबू आती रहती है। हाँ, जैसे हम लोग सुअर को देख के हंसते हैं जो गटर में घूमते रहता है, बोले क्या जानवर है, कैसा जीता है ये, क्या खाता है, कितना गंदा है ये। वैसे ही हमारे शरीर को जिसमें से गंदगी बदबू आती है उसको देखकर देवता लोग हंसते रहते हैं, क्योंकि देवताओं के शरीर में बदबू नहीं आती, पसीना निकलता नहीं है, खुशबू आती है, खुशबू सुगंध। तो ये हमको जानना चाहिए, हम जानवर को देख के हंस रहे हैं, देवता हमको देख के हंस रहे हैं, और देवताओं को भी भगवान के भक्त देख के हंसते हैं, क्योंकि वो कितने लोग कहाँ कहाँ लाकर भोग लेने का प्रयास कर रहे हैं, कोई अप्सराओं के साथ, कोई रंबा के साथ, कोई मेनका के साथ, सोच रहा है आनंद लूंगा मैं, लेकिन उनको पता नहीं है वो मेनका का आनंद आज है और कल नहीं है, अपना पुण्य खत्म हो गया तो छोड़ के आना पड़ता है मेनका को पृथ्वी पर। ऐसा ही हिसाब किताब है। हवाई जहाज जो है वो आकाश में तब तक उड़ता है जब तक उसके अंदर पेट्रोल होता है, जब पेट्रोल समाप्त होता है तो आकाश की खुशी छोड़कर जमीन पर आना पड़ता है उसको पूरा पेट्रोल भरने के लिए। क्षणे पुण्य मर्तलोके विशन्ति, जब तक पुण्य का स्टॉक है तब तक स्वर्ग में रहेगा वो आदमी, जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो मर्तलोके विशन्ति, उसको मर्तलोक मतलब मृत्यु लोक में आना पड़ता है दोबारा, जहाँ मृत्यु होती है ऐसे लोक में वापस आना पड़ता है, फिर यहाँ और पुण्य करेगा तो फिर ऊपर जाएगा, लेकिन वहाँ पर परमानेंट कमरा नहीं मिलता है। जब पुण्य का हिसाब खत्म होता है तो वहां पर आना पड़ता है, तो यहां पर पुण्य पाप करेगा तो नरक में जाएगा, वहां पर पाप का हिसाब खत्म होगा तो दोबारा मरते लोक में आएगा। स सब जगह घूम के यही आना है वापस, लेकिन हमको यहां से निकलना है तो भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। ये हमारे आज का कथा का सार है कि आपको इसी जन्म में भगवान के नाम के प्रति आकर्षण पैदा करना पड़ेगा, और वो अगर नहीं है तो उसके पहले संतों की सेवा करनी पड़ेगी। संत को सलाम करना पड़ेगा, पहले दंडवत करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, संत के संग में रहना पड़ेगा, उसके साथ रहकर उसकी सेवा करनी होगी। जब सेवा करेंगे तो धीरे 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 हमको उनकी संग में रहते हुए उनकी बातें सुनकर भगवान के विषय में रुचि उत्पन्न होगी उनकी कृपा से, और फिर हम धीरे धीरे अपने आप को भगवान की ओर यहां से मुक्त करके भगवान की ओर प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।